आप हैं SBS हिंदी के साथ।
शाम 5 बजे गौरव वैष्णव के साथ सुनिए मुख्य समाचार। विक्टोरिया में 13 जुलाई के बाद एक बार फिर कोरोना संक्रमण से कोई मौत नहीं। भारतीय संसद के मॉनसून सत्र में हरिवंश सिंह एक बार फिर राज्यसभा उपसभापति चुने गए। और खेल में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए फीफा जुड़ा संयुक्त राष्ट्र के साथ। और अब समाचार विस्तार से। क्षेत्रीय विक्टोरिया के व्यवसाय इस सप्ताह के दूसरे भाग में खुलने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि राज्य के कोरोना वायरस रिकवरी रोडमैप के तहत इन जगहों में सीमित ग्राहकों की ही अनुमति होगी। बाहरी समारोह, यात्रा, होटलों में बैठकर खाना और घरों में आगंतुकों का स्वागत करने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन मेलबर्न में रहने वाले लोगों से क्षेत्रीय विक्टोरिया की यात्रा नहीं करने को कहा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोविड संक्रमण से कोई मौत दर्ज नहीं की गई है। हालांकि 42 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही पिछले 14 दिनों में कोविड संक्रमण के नए मामलों का औसत 52.9 हो गया है। माना जा रहा है कि मेलबर्न के लोगों को प्रतिबंधों में कुछ और छूट 28 सितंबर के बाद मिल सकती है। हालांकि इसके लिए एक पखवाड़े में नए मामलों का औसत 30 से 50 के बीच होने की शर्त है। प्रीमियर डेनियल एंड्रूज ने कहा कि नए मामलों की संख्या अगले चरण में जाने का निर्णय लेने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि मेलबर्न के लोग क्षेत्रीय विक्टोरिया से सीख ले सकते हैं।
We have actually driven case numbers down to very low numbers in regional Victoria. That's taken some time. We stayed the course and now we can open up.
विक्टोरिया के आपातकालीन प्रबंधन के प्रमुखों में से एक अधिकारी ने एक जांचकर्ता टीम को बताया है कि शुरुआत में उन्हें होटल एकांतवास कार्यक्रम में सुरक्षा कर्मियों की कोई आवश्यकता नहीं दिखी थी। ये जांच इस योजना में शामिल कर्मचारियों और होटल संचालकों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पर ध्यान दे रही है। ये योजना विक्टोरिया में कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए बनाई गई थी। पिछले सप्ताह जांच टीम के सामने एक मामला आया जहाँ एक संक्रमित सुरक्षाकर्मी ने बताया कि उसके पास व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों को पहनने के बारे में बहुत कम जानकारी और निर्देश थे। आपदा प्रबंधन आयुक्त एंड्रू क्रिस्प ने बताया कि इसके बाद प्राइवेट सुरक्षा को सैन्य स्टाफ से बदला गया था।
I attended a meeting the following day where there was discussion about using resources or Corrections Victoria within Department of Justice and Community Safety as that option. I understood from that meeting that was the option that was going to be taken forward for approval, but I had no role in that.
साउथ ऑस्ट्रेलिया मंगलवार मध्यरात्रि से ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी के साथ सीमा प्रतिबंधों को ढीला कर रहा है। कैनबरा के यात्रियों को अब साउथ ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए इसके बाद 14 दिनों के एकांतवास की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि उन्हें केवल हवाई मार्ग से ही आने की अनुमति होगी। साथ ही ACT के यात्रियों को यात्रा के लिए प्री अप्रूवल यानी पूर्व अनुमोदन की ज़रूरत होगी। न्यू साउथ वेल्स के यात्रियों के लिए अभी कोई नया फैसला नहीं लिया गया है। पुलिस कमिश्नर ग्रांट स्टीवंस ने कहा कि न्यू साउथ वेल्स के लोगों को अभी भी एकांतवास के नियमों का पालन करना होगा।
The 14-day quarantine period will remain in force for the foreseeable future until such time as South Australian health experts are satisfied that the community transmission issues which are occurring in New South Wales have abated to the degree that we can allow that movement from New South Wales into South Australia.
न्यू साउथ वेल्स ने पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 7 नए मामले दर्ज किए हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से सामुदायिक प्रसार के मामले न के बराबर हैं। स्कूल की छुट्टियों से ठीक पहले स्वास्थ्य अधिकारियों ने टेस्ट की संख्या में गिरावट को लेकर चिंता जाहिर की है। प्रीमियर ग्लेडीज बर्जैकलेन ने कहा कि छुट्टियों के दौरान परिवारों के बीच ज़्यादा संपर्क होगा और ऐसे में कोविड 19 के जोखिम को कम करने की ज़रूरत है।
Families, and rightly so, will be travelling through all parts of New South Wales during that time. So mobility will be increasing and families will be moving all across the state. And so it's really important for us to keep testing rates high.
अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले लैटिनी मतदाताओं से वोट अपील करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिनिक्स एरिजोना में कार्यक्रम आयोजित किए। कोरोना वायरस की खबरों के बाद भी उन्होंने लास वेगास के बाद ये आयोजन किए हैं। हालांकि उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन ने पोर्टोरिकन समुदाय को संबोधित करने के लिए फ्लोरिडा में सभाएं की।
But a vote for Republicans this November is a vote for the American dream, and that's all I have to say. I just want to thank you very much. I want to thank you very much.
और अब खबरें भारत से। सोमवार को हरिवंश सिंह एक बार फिर भारतीय राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हरिवंश जी के व्यवहार की वजह से वो उनका बहुत सम्मान करते हैं।
मैं श्रीमान हरिवंश जी को दूसरी बार इस सदन का उपसभापति चुने जाने पर पूरे सदन और सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सामाजिक कार्यों और पत्रकारिता की दुनिया में हरिवंश जी ने जिस तरह अपनी ईमानदार पहचान बनाई, उस वजह से मेरे मन में हमेशा उनके लिए बहुत सम्मान रहा है।
भारत के केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि सरकार के पास प्रवासी मजदूरों की मौत के आंकड़े नहीं हैं। ऐसे में किसी को भी मुआवजा देने का सवाल नहीं उठता है। दरअसल सरकार से पूछा गया था कि कोरोना वायरस लॉकडाउन में अपने परिवारों तक पहुंचने की कोशिश में जान गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के परिवारों को क्या मुआवजा दिया गया है। सरकार के जवाब पर विपक्ष की ओर से खूब आलोचना और हंगामा हुआ। श्रम मंत्रालय ने माना है कि लॉकडाउन के दौरान 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी मजदूर देश भर के कोनों से अपने गृह राज्य पहुँचे हैं। नीट परीक्षाओं के पहले कई छात्रों की आत्महत्या की खबर भारतीय लोकसभा के मानसून सत्र के पहले दिन भी सदन में गूंजी। डीएमके नेता टीआर बालू ने कहा कि जिन 12 छात्रों ने आत्महत्या की है वो ग्रामीण क्षेत्रों से थे। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र केवल CBSE पाठ्यक्रम से ही लिया गया था, इस वजह से भी छात्रों में निराशा थी।
नेशनल एलिजिबिलिटी इन एंट्रेंस टेस्ट आर कंडक्टेड ओनली इन CBSE सिलेबस। So, within a month after plus two result, within a month they have to go through, they have to enter into NEET examination, and they are clueless, and because of that, without knowing any subject matter which is being asked in CBSE examination, so CBSE syllabus, the people are standing at the same time, they are helpless, they are committing suicide, sir.
भारत सरकार ने संसद को बताया है कि CBI की ओर से जितने बैंक फ्रॉड की जांच की जा रही है उन मामलों के 38 आरोपी 2015 के बाद से अब तक देश छोड़कर भाग चुके हैं। सांसद दीन कुरियाकोसे के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि CBI ने बताया है कि बैंकों के साथ वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में शामिल 38 लोग 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2019 के बीच देश छोड़कर भाग चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया कि प्रवर्तन निदेशालय 20 लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल के पास भी जा चुका है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी मंगलवार को यह खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपये में कीमत 53.66 रुपये और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 73 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के US ओपन से बाहर होने पर सहानुभूति जताई है। आपको बता दें कि जोकोविच ने गलती से बॉल एक महिला अधिकारी पर मार दी थी, जिसके बाद उन्हें न केवल US ओपन से बाहर कर दिया गया था बल्कि उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। बाद में उन्होंने माना था कि कोर्ट में वो कई बार इस तरह से अपनी खींच निकाल चुके हैं। हालांकि रोम में आज नडाल का मुकाबला उन्हीं पाब्लो कैरेनो बस्टा से है जो कि उस मैच में जोकोविच के प्रतिद्वंदी थे। Nadal ने कहा कि आत्मनियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है।
The consequences have been always the same. Nothing new on that. Novak was unlucky. The rules says clearly that's a default. Sorry for him. He was he had an opportunity there. In some way you should not be doing this.
फुटबॉल में दुनिया की अधिशासी निकाय फीफा और संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम खेल में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए साथ आए हैं। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने वियना में इस तरह के खतरों से निपटने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
Memorandum of understanding which is a strong signal. It is a milestone for FIFA which recognizes the work we have been doing in FIFA in the last 4 years for good governance, transparency, accountability, the reforms that we have implemented in FIFA. It will help us in football to fight corruption, which is our top priority, especially in FIFA after the history that we all know of FIFA.
और अब डालते नजर कल यानी बुधवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर. शुरुआत पर्थ से. पर्थ में कल बादलों की आवाजाही रह सकती है. अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस. एडिलेड में भी आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं. अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस. मेलबर्न में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं. अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस. देश की राजधानी कैनबरा में सुबह के कोहरे के बाद दिन भर धूप खिली रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस. सिडनी में ज़्यादातर धूप खिली रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस. ब्रिस्बेन में बारिश की संभावना है. अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस. डार्विन में दिन भर धूप रहने के आसार हैं. अधिकतम तापमान 34 डिग्री, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस. भारत की राजधानी नई दिल्ली में धूप रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 37 डिग्री जबकि न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. समाचारों में आज इतना ही.
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हम हैं.